ते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ अष्टम स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 4 से 7 तक। श्लोक संख्या 4, 5, 6 पाठ करेंगे और 7 के तात्पर्य अनुवाद करेंगे। श्लोक संख्या 4 ऋषि उवाच।
ये श्लोक
7 लिखा है तो केवल हम आवृत्ति कर लेते हैं, 7 को आवृत्ति करेंगे। ऋषि उवाच मनोवस्मिन् व्यतिता षट्कल्पे स्वयंभूवा दया आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभवः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा वर्तमान कल्प में 6 मनु हो चुके हैं, मैं तुमसे स्वयं हुए मनु तथा उनके देवताओं के प्राकट्य के विषय में वर्णन कर चुका हूँ। ब्रह्मा के इस कल्प में स्वयं हुए प्रथम मनु हुए। श्लोक नंबर 5 आकृत्यांग देवहत्यांग च दुहित्रोस्तस्य वै मनु धर्म ज्ञानोपदेशार्थ भगवान पुत्र तांगतः। स्वयं हुए मनु के 2 पुत्रियां थी आकृति तथा देवहूति, उनके गर्भ से भगवान 2 पुत्र के रूप में प्रकट हुए जिनके नाम क्रमशः यज्ञमूर्ति तथा कपिल थे। इन पुत्रों को धर्म तथा ज्ञान का उपदेश देने का कार्यभार संभाल गया था। देवहूति के पुत्र का नाम कपिल था और आकृति के पुत्र का नाम यज्ञमूर्ति था, दोनों ही धर्म तथा दर्शन ज्ञान की शिक्षा दी। श्लोक संख्या 6 कुतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यास्ये भगवान् यज्ञों यच्चकार कुरुद्वः। हे कुरुश्रेष्ठ, मैं देवहूति के पुत्र कपिल के कार्यकलाप को पहले ही तृतीय स्कंद में वर्णन कर चुका हूँ, अब मैं आकृति के पुत्र यज्ञपति के कार्यकलाप का वर्णन करूंगा। श्लोक नंबर 7 विरक्तः कामभोगेषु सकरूपापतिः प्रभुः विसृज्य राज्यं तपसे सभार्या वनमामिषत्। शब्दार्थ विरक्तः अनासक्त, कामभोगेषु इंद्रिय तृप्ति में सतरूपापति ही सतरूपा के पति प्रभु जो विश्व के स्वामी थे विसृज्य पुनः त्याग कर राज्यम अपने राज्य को तपसे तपस्या करने के लिए सौभार्या अपने पत्नी सहित वनमाविशत वन में प्रवेश किया। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा इस प्रकार है। सतरूपा के पति स्वयंभुव मनु स्वभाव से इंद्रिय भोग के प्रति तनिक भी आसक्त नहीं थे, अतएव उन्होंने अपने विलासमय राज्य को त्याग दिया और अपनी पत्नी सहित तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजसयो विदुः, यह सर्वोच्च विज्ञान शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त हुआ और राजर्षियों ने उसे इस तरह से समझा। सारे मनु परिपूर्ण राजा थे, वे राजर्षि थे। दूसरे शब्द में यद्यपि वे विश्व के सम्राट थे किंतु ये महान संतों के समान ही थे। उदाहरण के लिए स्वयं हुए मनु विश्व के सम्राट थे किंतु इन्हें इंद्र तृप्ति की कोई इच्छा न थी। राजतंत्र का यही अर्थ है, देश के राजा या साम्राज्य के सम्राट को इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह सहज ही इंद्र तृप्ति त्याग दे। ऐसा नहीं है कि क्योंकि यह राजा है अतः वह इंद्र तृप्ति पर व्यर्थ ही धन खर्च करे। ज्यों ही राजा इंद्र तृप्ति पर धन खर्च करके पतित हो गए हैं त्यों ही वे विनष्ट हो गए हैं। इसी तरह इस समय राजतंत्र समाप्त हो चुका है और लोगों ने प्रजातंत्र स्थापित किया है किंतु वह भी असफल हो रहा है। अब प्रकृति के नियमानुसार यह समय आने वाला है जब तानाशाही से प्रजा को अधिकाधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। यदि राजा या तानाशाह अकेले या सरकार के सदस्य संयुक्त रूप से राज्य या साम्राज्य को मनु संहिता के नियमों के अनुसार चला नहीं पाते तो निश्चित रूप से उनकी सरकार टिकी नहीं रहेगी। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामहं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखानतंश। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज प्रातःकालीन इस भागवत सत्र में आप जो भागवत प्रेमी भक्तवृंद मातृवृंद पधारे मैं सबको स्वागत करता हूं। तो अभी ये जो प्रसंग चल रहा है अष्टम स्कंद के शुरुआत में, जिसमें मनु के वर्णन हो रहा है, मन्वंतर कथा, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को मनु के बारे में बताते हैं क्योंकि परीक्षित महाराज के मन में ये जिज्ञासा आई कि जब भगवान के प्राकट्य अभी ऐसे हुआ ऐसे बताए तो मुझे भूत वर्तमान भविष्य तीन काल में भगवान किस किस रूप में आते हैं क्या करते हैं सारे बताए डिटेल। थोड़ी सी भगवान के बारे में बताने से बहुत कुछ जानने की इच्छा होता है। ये परीक्षित महाराज का एतादृश जिज्ञासा को देख करके सुखदेव गोस्वामी फिर शुरुआत से सृष्टि के शुरुआत से बोले शुरू करूंगा फिर सृष्टि के शुरुआत से ब्रह्मा जी के इस कल्प में जो प्रथम राजा हुए थे उनसे वर्णन करना शुरू करते हैं। वो बोलते हैं ब्रह्मा जी का जो एक कल्प चल रहा है इस दिन जो चल रहा है आज का दिन का सबसे पहले सवेरे जो राजा हुए थे फर्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितना शिफ्ट होता है 14 शिफ्ट होता है और एक एक शिफ्ट कितना लंबा होता है केवल एक चतुर्युग का हम हिसाब किताब नहीं कर सकते। तो लगभग 71 चतुर्युग एक एक हिस्सा होता है, 14 हिस्सा सुबह से शाम तक हो जाएगा। तो सुबह से जो शुरू हुआ था ब्रह्मा जी के इस कल्प में, तो इस विश्व के पूरे साम्राज्य के जो सम्राट थे वो थे स्वयंभू मनु। वो मनु महाराज का नाम था स्वयंभू मनु, इसी कल्प में स्वयंभू मनु पहला राजा था। उसका मतलब शायद अन्य के कल्प में दूसरा कोई मनु होते होंगे, ये बात लिखा गया कि इसी कल्प में स्वयंभू मनु पहले सम्राट हुए थे। तो इससे शुरू करते हैं, बोलकर कहते हैं देखो स्वयंभू मनु राजा थे और उनके वंशवर्ण सबसे पहले उनके से शुरुआत हुआ। सतरूपा उनके पत्नी थे, उनमें उनके दो बेटी हुए आकुति और देवहूति। तो उन दोनों से मनु ने दो पुत्र उत्पन्न किए, दोनों ही भगवत अवतार थे। देखिए हमारे जैसे अड़ी सीधा भगवान अवतार लिए, दोनों पत्नी में दो भगवान आए, एक यज्ञमूर्ति और एक कपिल। देवहूति के गर्भ से भगवान कपिल आए जो संख्य दर्शन के शिक्षा दिए, और आकुति के गर्भ से यज्ञ के रूप में यज्ञमूर्ति के रूप में भगवान आए, वो भी आकर के योग धर्म शिक्षा दिए। तो फिर सुखदेव को संबोधन, देखो मैं कपिल के पुत्र देव देना कपिल भगवान जो देवहूति पुत्र है उनके बारे में डिटेल तृतीय स्कंध में वर्णन कर चुका हूं, उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। अभी ये जो दूसरे बेटी थे उनके आकुति, उनके जो पुत्र यज्ञ के बारे में उसके वर्णन करूंगा वो किस प्रकार। ऐसा कह करके अब इस श्लोक में उन्होंने उनके वर्णन शुरू करते हैं। इसमें कहते हैं कि विरक्त काम भोग से शुरू से करते हैं मनु महाराज का कार्यकलाप से। विरक्त काम भोगेशु सतरूपा पति प्रभु, उनके बेटे के तो बाद में कहेंगे, पहले पिताजी की बात कह रहे हैं कि वो कैसे थे। कि वो ऐसे सभी जानते हैं ब्रह्मा जी के डे वन का फर्स्ट शिफ्ट के अधिकारी वही थे, है ना, वही थे। और वो भी ऐसे नहीं सोचे कि आगे चलकर ये तकलीफ होगा तब मैं छोड़ दूं, हम लोग को जब तक बीमारी नहीं लगता तो हम परहेज नहीं करते, भोगते चले जाएंगे, खाते चले जाएंगे धूमधाम, जब डॉक्टर बता देगा शुगर बढ़ गया तब रोकेंगे, है ना। मतलब शरीर के तृतीय अवस्था में चतुर्थ अवस्था तक जाता है, तभी फिर सोचते हैं अरे थोड़ा परहेज करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, है ना, नहीं विराग होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, चतुर्थ कहोगे पंचम अवस्था तक भी चला जाता है। लेकिन ये देखिए डे वन महाजी के सृष्टि के प्रथम आरंभ में जो राजा शंभु मनु हुए थे उनके लिए भोग ऐश्वर्य का तो कोई तुलना ही नहीं था। एकमात्र पुरुष थे संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्मांड में, और उनका किस प्रकार भोग ऐश्वर्य लक्ष्मी प्राचुर्य होगा। लेकिन सबसे पहले शब्द उनके लिए आया है सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ऐसा मत समझो राजा के साथ विरक्त, ये श्लोक का प्रथम शब्द ही है विरक्त। विरक्त का अपोजिट शब्द होता है आसक्त, मतलब आसक्त नहीं थे, किसी में से आसक्त नहीं थे, ये शब्द उसकी दूसरी बात कहते हैं, किसी में नहीं थे। काम हो गए शु, आप बोलेंगे सब चीज में विरक्त, बोले नहीं, हम लोग विरक्त होते हैं किससे, जप में अध्ययन में, इससे तो विरक्त हम लोग होते हैं, है ना। नहीं आप अभी इस सीजन में विद्या डिस्क्रिप्शन करते हैं लोगों, पढ़ी है क्यों फिर लो, पढ़ी है ना घर में, पिछले साल ली थी, अरे 10 साल पहले ली थी, अभी तक सील नहीं खोली, पढ़िए इतने विरक्त है, बिल्कुल लिए लेकिन टच नहीं करते, क्या प्रभाव पड़ जाएगा, ऐसे क्यों करें। और कभी कभी आते हैं सत्संग में, क्लास में भी आते हैं, सुनते हैं, इतने महाविरक्त हैं जो सुनते हैं उनको वहीं छोड़कर जाते हैं, गेट तक नहीं ले जाते ना, हाँ आसक्त थोड़ी है, महाविराग्य जो सुने वहीं छोड़ देते, विराधिका रमण के भी हाल में छोड़कर जाए सारा सत्कथा, फिर असत जो सत्कथा मेरा होना चाहिए इसको लेकर जाऊंगा, वही झगड़ा झट्टी हेन टेन सब जो मैंने पाल कर रखा उसको लेकर जाऊंगा, इनके प्रति आसक्त है, लेकिन इस चीज के प्रति महाविरक्त है। तो इनके पहला गुण बताया गया सतरूपा पति शंभु मनु के, प्रथम गुण किस प्रकार था, विरक्त तो थे, तो हम बोले हम भी विरक्त तो हैं, किस चीज में, बहुत सारी चीजें बहुत विरक्त है ना। अब वो किस चीज में विरक्त थे, न काम भोगे सु विरक्ता काम काम भोग करने के लिए काम शब्द का अर्थ है नाना प्रकार की शारीरिक सुख, उसको काम कहते हैं। और आप सब अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि इसमें हम इतने एक्सपर्ट हैं, मुझे एनालाइज करना नहीं पड़ेगा। काम भोग क्या है, हम तो इसी को करते आ रहे हैं, दूसरा कुछ करते नहीं है ना। सुप्रीमली एक्सपर्ट इन दिस बिजनेस हम, जद्यप काम भोग मिलता नहीं हम, मर मर कर थोड़ा बहुत मिलता, लेकिन फिर भी आशा क्या कम है। ओ माय गॉड, इसमें बताना नहीं चाहिए काम भोग क्या है। लेकिन ये जो काम भोग है, शारीरिक सुख के विचार अब मिल नहीं रहा है भोगने के लिए दूसरी बात है, लेकिन अब मिल जाए, मिलने के लिए आशा, ये भी काम होगा। काम होगा कामना है ना, वो आशा है, भोग करने की आशा और भोग भोगने की इच्छा और स्वयं भोग, ये तीनों ही काम आशा है ना, समझ में। प्लान बनाना, अच्छा करना, प्रवृत्ति प्राप्त करके भोगने की प्रिपरेशन करना और भोगना, तीनों ही काम भोग है। तो इस प्रकार के काम भोग के प्रति मनु महाराज स्वयं मनु विरक्त थे, मतलब नहीं था, लेकिन कुछ हद तक काम भोग करना पड़ेगा संसार में रहने के लिए, केवल इतने मात्र ही काम भोग करते थे। विरक्त का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करते थे। हम लोग जैसे हैं, क्या करें, इस कर्म में रहने के लिए सोलामाला जब करना पड़ेगा इधर उधर टांग खींच करके, नहीं तो निकाल देंगे, भागवत क्लास में आना पड़ेगा, सोलामाला जपना पड़ेगा, तो इतना तक करते हैं, उससे ज्यादा नहीं, ना बड़े मुश्किल से इतना तक कर लेते। तो इसी प्रकार इस संसार में रहने के लिए जितना काम भोग का आवश्यकता है इतना करना चाहिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब रघुनाथ को उपदेश दे रहे थे, रघुनाथ गोस्वामी तो बोले नहीं नहीं मुझे प्लीज कृपा करिए, मैं आपके साथ चला जाऊंगा छोड़ करके। और उनके पिताजी उतावली से बड़े बहुत सारे लोग बैठे थे पब्लिकली, और महाप्रभु पर पकड़ करके युवक की नहीं नहीं मुझे कृपा करे, मैं आपके साथ रहूंगा, घर नहीं जाना चाहता हूं, बस प्लीज मैं आपके साथ रहूंगा। महाप्रभु देखे बच्चा तो बड़ा अच्छा है, चमा प्रकट कर, लेकिन सारे पब्लिक और बैठे हैं, उनके पिताजी तावली सब हैं, वो मूवमेंट का बड़ा डोनर है। हाँ, गोवर्धन मजुमदार हरिमंदर बड़े डोनर थे। तो महाप्रभु देखिए कितने एक्सपर्टली डील करते हैं। तो बोले डांटे रघुनाथ बदमाश, घर छोड़कर आना चाहता, इतने बड़ी आपके पिताजी है, तावजी इतने सुंदर है, जाओ। मरकट वैराग्य ना देख लोग दिखाई, ये मरकट की तरह वैराग्य मत करो लोग दिखाने के लिए, जाओ। मरकट की तरह वैराग्य क्यों दिखाने को बोलते हैं, मरकट जैसा वैराग्य हम जिसको वैरागी बनना चाहते हैं ना, वैरागी बंदर के साथ कंपटीशन में किसी प्रकार सक्सेस नहीं हो सकते, नो वे, वो हमसे हमेशा आगे रहेगा। वैराग्य हम सोचते हैं घर छोड़ दिया, मैं घर छोड़कर आया हूं, बंदर का घर ही नहीं है, कोई घर है तो पहले से छोड़ा हुआ है ही नहीं, मकान दुकान कुछ नहीं उसका। और बोलेंगे देखो हम तो ऐसे पहनते हैं, कोई अच्छा नहीं पहनते हैं, जींस नहीं पहनते, धोती कुर्ता पहनते, बंदर तो तभी नहीं पहनता, कुछ वस्त्र पहनता है। बोले देखो हम तो महासंत है, केवल बैल सब्जी खाते हैं, दूसरा फिस्ट नहीं खाते हैं, अरे बंदर का तो खिचड़ी ही नहीं, बैल सब्जी बैल भी नहीं करता, सीधा कच्चा खाता, वो भी सब्जी मंडी से नहीं लाता, सीधा बैल से है ना। तो उनके किसी प्रकार से कंपैरिजन में हम अपने को नहीं कर सकते उनका वैराग्य के समान, ना घर है ना कपड़ा है ना खाना, किसी प्रकार से धन नहीं, बैंक बैलेंस को नथिंग, मंदिर के सामने वी आर नथिंग वैराग्य का। लेकिन जहां तक इंद्रिय भोग का काम भोग का बात आता है, हम भी उनके कंपैरिजन नहीं हो सकते, हम भी फेल उनके सामने इस विचार में भी। तो इसलिए ये सब करते हुए भी काम भोग के प्रति विरक्त नहीं है, इसलिए बंदर कहा जाता, महात्मा नहीं कहा जाता, केवल इतना मेंटेन कर ले तो वो महात्मा हो जाता है। तो इसलिए भगवान ने रघुनाथ जी को डांटे, बोले घर छोड़ने का बात कर रहा है, बाबा जी बनना चाह रहे हैं, लेकिन मन में तो कामना है, तो बंदर की तरह मत वैरागी बनो, मरकट वैराग्य ना आकर लोक दिखाइए। लोगों को दिखाने के लिए पब्लिक भी बोलता है कि मैं बाबा जी हो जाऊंगा, हल्ला करते बंद करो, ऐसे नहीं बनना। नाट्य वहां पर मैं क्या करूं ना, जथा योग्य विषय भुंज अनासक्त है, जाओ विषय भोग करो घर में रहो, लेकिन कैसे विषय भोग करो, समुचित शब्द बोले जथा योग्य। जथा योग्य क्या होता है, जितने आपको आवश्यकता है इतने ही ग्रहण करना, उससे एक छदाम भी ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा नहीं ग्रहण करना। उपदेश देते हुए बहुत बड़े भारी उपदेश है, इसे निषद में इन्वोकेशन में कहा गया है, ईशावश्यम इदम सर्वम जत किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूमिधा मां विधा कस्य सिद्धनम। ये समस्त संसार में ये टुकड़ा से लेकर के बड़े तक प्रत्येक वस्तु का एकमात्र मालिक कौन है, ईश्वर। हम लेकर आए थे कुछ ना, लेकर जाएंगे नथिंग, कुछ नहीं। यहां आकर कागज पत्र रजिस्ट्री सील करके बनाते हैं, वो भी जो लिखा पढ़ी करते बना लोगे वो भी जानते हैं थोड़ी दिन के लिए, हम भी जानते हैं थोड़ी दिन के लिए, कुछ नहीं है। जिनका है इनका है, था रहेगा। इस अवश्य इदम सर्वम, समस्त सब कुछ के मालिक केवल ईश्वर है। लेकिन हम कभी कभी जन्म होने से पहले मेमरा करते, मतलब हम नहीं कर पाते, पिताजी मतलब बोलते उनका ये रहूंगा, उनके लिए तुम ये करके रखा बेटा, कि बेटा हुआ नहीं तब से रिजल्ट हो जाता, और उसके बाद तो मैंपन मेरापन कितना होता है। लेकिन ये बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, हमारा कुछ भी नहीं, ना हमारा है, ना हमारे पिताजी का है, ना दादाजी का, नाना जी का, किसी का नहीं है। किसका है, ईश्वर का। तो ईश्वर तो सबका है, हमारी प्रॉपर्टी तो है नहीं, हो तो सबका है, तो सभी का जितना जितना तेन त्यक्तेन भूंजित, आप भोग करो लेकिन जितना आपकी कोटा इतना, बाकी कोटा को हाथ मत लगाओ। अगर थोड़ी सी हाथ लगाया आपको दंड मिलेगा। जैसे इस भौतिक संसार में हम देखते हैं, हमारा बगीचा में फूल पेड़ हम भी लगाए, उसमें दो फूल आया, लेकिन हमारे ठाकुर जी के तो चार चार, उनके पेड़ में तो बहुत सारे फूल हैं दूसरे में। तो हम क्या करते हैं, कभी जा करके सुबह सुबह वो उठते नहीं रहते जल्दी, तो हम जाकर ले आते हैं, ले आते और एक दिन पकड़ा जाएंगे तो छोड़ेगा है ना, उसे कैसे कर देंगे। तो इसलिए किसी का हिस्सा हम लेने से पहले परमिशन लेना चाहिए, हमारा जितना हिस्सा है इतना ही भोगे। तो इसलिए रघुनाथ गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने बोले, जितना आवश्यक है इतना ही भोग करो, उससे ज्यादा नहीं। जथा योग्य विषय हो, अनासक्त हो करके इतना ही विषय। तो यहां शब्द आया अनासक्त, कि अनासक्त का अपोजिट शब्द आया विरक्त, काम भोगे सु। अनासक्त और विरक्त एक ही बात है। तो काम भोग के प्रति विरक्त हो जाना मतलब टोटली छोड़ देना नहीं, जितना आवश्यक है संसार में और अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना ही ग्रहण करो, उससे ज्यादा नहीं। तो जब अनु महाराज आपने प्रथम श्लोक में कहा गया, अपने दो बेटी थे उनको समुचित रूप से विवाह कर दिया और उनके दो बेटे भी हुए, भगवान की दो अवतार थे, तो उन सबसे तो ये सब जो ठीक ठाक हो गया तो फिर घर में रहना उचित नहीं समझे। घर उनका थोड़ी घूमकर तो महल होगा, राजबाटी राजमहल होगा, लेकिन उसमें भी वो रहना नहीं चाहे, जंगल में जाना चाहे। क्योंकि जंगल में जाना, क्योंकि घर में कोई आसक्त थे नहीं, इतनी बड़ी मकान दुकान था, सब कुछ था उनका, लेकिन कोई उसमें अटैचमेंट था नहीं। विरक्त काम भोगे सु सतरूपा पति प्रभु, सतरूपा के पति प्रभु शब्द बोलते हैं, पूरे विश्व के एकमात्र अधिकारी राजा ये प्रभु। हम जैसे अपने आप से किसी प्रभु बोलते हैं, ऐसे प्रभु नहीं थे। अभी प्रभु बोलते हैं वो गाली भी देते हैं उसके साथ में, एक प्रभु होता है ना, ये तो केवल लिप सर्विस है, इस प्रकार का गुरु, लेकिन ये वास्तविक प्रभु थे। प्रभु माने मास्टर, मालिक, उनके ऊपर तो मास्टर थे ही नहीं, दी मास्टर वही थे पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र एक छत्र अधिपति, तो इसलिए उनको प्रभु कहा गया। वो शत्रुपा जी के पति, अब माता में हम बैठे, किसी के पति अगर पूरे सृष्टि के एक छत्र मालिक हो जाए तो आपने वो कैसे समझेंगे, बोले क्या जा रहे हैं छोड़ करके, क्या कमी है इधर, है ना। अब हम तो कोई रिक्शा वाले के मालिक नहीं है, लेकिन फिर भी कितना हमारा भाव रहता है। लेकिन शत्रुपा जी मैंने किस प्रकार उनका स्थिति होगा था सोचिए, यहां शत्रुपा का नाम आया उनकी पत्नी का, क्योंकि वो किसी के पत्नी थे, उन प्रभु के पत्नी थी जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र मालिक था, उनके विरोध में कोई था ही नहीं, नो अपोजिशन। इसलिए प्रभु शब्द भागवत में कहा गया ये शत्रुपा के जो पति थे वो तो दी मास्टर थे, दी मास्टर के दी पत्नी हो वो कभी चाहेगा कच्छों के जंगल में जाओ, है ना, वो तो अपनी चलाएगी, लेकिन नहीं नहीं कि उनका नाम केवल इतने के लिए आया शत्रुपा जी के कि ये प्रभु के पत्नी थी, शत्रुपा पति ही प्रभु, ये जो शंभो मनु थे वो शत्रुपा के पति थे, वो प्रभु थे, और उन्होंने विसृज्य राज्यम पूरे राज्य को पूर्ण रूप से त्याग दिया, छोड़ दिया। उसका पीछे ध्वनित अर्थ है शत्रुपा जी बिल्कुल कंप्लेन नहीं किए, बोले प्लीज जो आपकी इच्छा, जैसे आपकी इच्छा मैं आपके साथ हूं, यही से होना चाहिए, वॉट एवर यू डिसाइड, आप घर में छोड़ दिए महल सब सब छोड़ दिए गाड़ी घोड़ा, हाँ जाना है जाना चले। पति के कष्ट को स्वीकार करने के लिए, पूरे उनके भाग लेने के लिए पूर्ण रूप से तैयार, ये फास्ट कपल है, ये हम सुन लीजिए, शुरुआत सृष्टि वहीं से हुआ, पूरे ब्रह्मांड के सर्वप्रथम पति पत्नी ही हाँ फास्ट सेट है, वही हम लोग तो कितने सेट को पता नहीं गिनती नहीं, ये दी फास्ट सेट। और उनमें पति पत्नी और पत्नी किस प्रकार थे, पति कोई कोई साधारण आयुष अफसर नहीं था, कौन थे वो, पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र छत्रपति सम्राट, एकमात्र अधिकारी, दूसरा कोई अपोजिशन में नहीं था उनका ना, उनके ऐसी पति पत्नी थे, इतने बड़ी स्टेज पर उनको स्थिति था, लेकिन उन्होंने घर त्यागने की विसृज्य राज्यं तपसे, राज्य सुख को राज्य को त्याग दिए, छोड़ दिए, इसलिए सुखदेव भूषण शत्रुपा के नाम दिए कि वो जो छोड़ने के विचार के पत्नी तो कहते थोड़ा दिन रुक जाए, ये क्या कर रहे हैं, नहीं मेरा अभी जॉइंट पेन हो रहा है, मेरा अभी ये हो रहा है, शुगर बढ़ा हुआ है, इसी किसी जाएंगे अभी डॉक्टर को बुलाएंगे, थोड़ा देखेंगे बाद में सोचेंगे, नहीं। जैसे मनु महाराज ने विरक्त भाव थे ऐसे ही शत्रुपा जी, ये पत्नी धर्म स्त्री धर्म नहीं होता। महाभारत में देखते हैं धृतराष्ट्र अंधा थे, अंधा था, और उनका जो मैरिज शादी के बाद चली तो तभी जाना तो कैमरा था नहीं, तो कैसे फोटो बनाकर भेजे होंगे, जो प्रस्ताव चल रहा था उनका गंधार प्रदेश के साथ, गंधारी के साथ, गंधार की राजकुमारी गंधारी थी अफगानिस्तान से, तो उनको जो प्रश्न चल रहा था तो दृश्य देखने में अच्छा था, लेकिन अंधा था, चश्मा पहन दिया, बिल्कुल कम भी आऊंगा कला दशम तो कौन पहने पहचान, रूप बढ़िया है, राजकुमार है, इतने सुंदर, और धृतराष्ट्र के बल का बारे में बताया गया 10,000 हाथियों का बल था उनका, कोई साधारण पुरुष नहीं था, इतने बलवान रूपवान पुरुष था, लेकिन था अंधा, अंधा को छिपाने के लिए कला दशा पहन लोग होते, बाकी सारे रूप सब कुछ क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सब दिखा दिए, तो सब बंदे दिखा दिए, रूप सिलेक्ट हो गए, सिलेक्ट होकर शादी हो गए, शादी होने के बाद मिसेस गंधा धृतराष्ट्र जब आए, अब आकर देखते हैं कि पति सिर्फ देख नहीं रहे, ऐसे कर रहे हैं, बोले वो क्या भाई, अब पता लगाए तो उनके चश्मा निकाल दो तो आंख ही नहीं, दृष्टि शक्ति नहीं, तो उन्होंने कोई दुख महसूस नहीं की। वो भी कोई अधिकारी थी नहीं, वो भी गंधार प्रदेश के 100 भाइयों के एक बहन थी गंधारी, ये जानते ना, उनका भी 100 भाई थे, एक बेटी थी गंधार नरेश के। और उन्होंने जब देखी पति की वास्तविकता है कि उनकी दृष्टि शक्ति नहीं है, तुरंत पट्टी बांध दी नाक, जीवन पर्यंत मैं भी नहीं देखूंगी, मेरे पति की जब ये दृष्टि सुख नहीं लगी, नहीं लेते हैं तो मैं लूंगी नहीं। ये स्त्री धर्म। आप कोई हम जैसे हमेशा देखते हो करते हैं, आप आंख बंद कर दो कैसा लगेगा आपको, कितनी देर तक आंख बंद कर खाएंगे पियेंगे बाथरूम जाएंगे आएंगे, कर सकते हैं? हाँ कर, पशु शुरू से नहीं देखते तो नहीं देखते चलता, अब अभी तक देखते अभी से बंद कर दो, और ऐसा नहीं कि सचमुच आंख फूट गया है, कुछ देखते हैं अभी आंख खोलने से देख सकता हूं, लेकिन जान बोझ कर बंद कर दू। इट इज नॉट ऑर्डिनरी तपस्या, हम सोच भी नहीं सकते कितने बड़े भारी तपस्या है वो, जान बोझ करके हमेशा के लिए आंख बंद कर देना, दृष्टि शक्ति होते हुए, देखने का शक्ति होते हुए आंख बंद कर लेना, किसी लिए केवल पति के, वो नहीं देखते हैं इसलिए मैं भी नहीं देखूंगी, कितने बड़े त्याग है, कितने बड़ा त्याग है। इस प्रकार शत्रुपाची को देखते हैं पति ने, इस प्रकार व्यक्त होकर डिसाइड किए मैं जंगल में जाकर तपस्या, जंगल में करेंगे ना तपस्या, तपस्या करूंगी, तपस्या शब्द का अर्थ जानते ना क्या होता है, बढ़िया ठंडी के सामने गरम गरम पूरी आलू दम पकौड़े है ना, नहीं तपस्या तो आप समझते होंगे क्योंकि कार्तिक महीना अभी अभी गया, थोड़े बहुत सो किए होंगे टेस्ट है ना, तपस्या के महीना गया, तपस्या का इस प्रकार से समझा जा सकता है कि कोई महान उद्देश्य के लिए, हमारे सदगति के लिए, हमारे कल्याण के लिए जान बूझ करके कुछ कष्ट सहन करना, वॉलंटरली आप राजी खुशी से कष्ट सहन करना, जैसे एकादशी आता है अभी तो चला गया ना, आएगा लेट नहीं ना, तो अभी किसी में फिर आएगा, तो एकादशी के दिन हमको तो एकादशी दिन आराम सोता लगता है कि कितनी जल्दी आ गए यार, अभी एक तो गया था पता नहीं थी कि एकादशी बराबर रह जाते क्यों, अरे वो तो महीना में दोबारा आता है, लेकिन हमको लगता है कि बड़ा गड़बड़ है ना। अब ये जबकि हम एकादशी फास्टिंग तो नहीं करते, इसके अंदर फास्टिंग के बदले फिस्टिंग करते हैं, एक लेटर एक्स्ट्रा जोड़ देते हैं उसमें, स्पेलिंग करेक्शन कर देते हैं, फिस्टिंग करते हैं, लेकिन फिर भी चिंता पड़ जाते हैं, केवल दो बार खाना पड़ेगा, केवल दो बार खाएंगे वो बढ़िया बात, ऐसा नहीं मैं सच बता रहा हूं, आप जो नॉर्मल डे में माताओं को पता होगा, नॉर्मल डे में आप घर में जो जितना बजट होता होगा परिवार में खाना पीना खर्चे में, एकादशी दिन कुछ कितना बजट होता होगा है ना, दो तीन दिन होता होगा जरूर, क्योंकि माले माल खाएंगे उस दिन, तो हम नाम दे रहे एकादशी है ना, इसीलिए अरे एकादशी तो फास्टिंग कर, ये क्या कर रहे हाई बजट तो इसलिए तपस्या कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा, कम से कम एक दिन तो मत खाओ, अरे नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है खाओ तो कम से अन्न तो न खाओ, लेकिन हम तो एकादशी अन्न के नाम में 108 वैरायटी कर डालते हैं, अब क्या होगा नहीं कम से कम एक दिन तो मानो, हम प्रयास करते हैं सुबह से नहीं तो 9 बजे में हो जाता नहीं, सवा खिचड़ी और क्या क्या एक दो आइटम, और दोपहर को तो आज एकादशी है यही है ना, क्या चल रहा है सर, आज एकादशी है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, फ्रूट सलाद नहीं है, फ्रूट क्रीम नहीं है, ये नहीं है, क्या एकादशी कैसे चलेगा भाई, ड्राई फ्रूट्स नहीं है, एकादशी कैसे हो तपस्या कुछ कष्ट उठाना चाहिए है ना, एक दिन हम अगर नहीं खाए मर जाएंगे क्या? ऐसे तो हमको अगर छूट दिया जाए हम तो कभी फास्टिंग नहीं करेंगे। सोच लो किसी प्रकार से मिला ही नहीं, हम खाने का चाह रहे थे प्रयास करके लेकिन मिला नहीं, किसी प्रकार से मिला नहीं सुबह शाम तक कुछ, पानी पीकर चलाए गाड़ी, मर तो नहीं आएंगे ना, शरीर बल्कि थोड़ा हल्का हो जाएगा, है ना? लेकिन एक दिन हम नहीं खाए, जितना हम अन्न धन से इतना खाना था ये तो बच गया ना नहीं। अगर दिल्ली शहर में कितने लोग हैं? दो करोड़। वर्ल्ड में नंबर वन सिटी लगता है, एक सिटी में 2 करोड़ पॉपुलेशन है। अगर 2 करोड़ लोग एक दिन में एक व्यक्ति कितना खा सकता है ग्रेन्स? 250 ग्राम एक वक्त के ना, पूरा दिन के बात कर रहा हूं, 1 किलो आधा किलो तक जाएगा, 2-3 बार आधा किलो सब अन्न और कुछ मसला मछली सब्जी पानी ये लगाने से सब्जी भाजी एक किलो तक जाएगा। वो बोलते हैं 1 किलो रिसर्च किए होंगे तो 1 किलो छोड़ दो अन्न की, देखो सब्जी तो सड़ जाएगा उसको खा लेते हमने, छोड़ेंगे नहीं। अन्न आधा किलो एक दिन में एक व्यक्ति अगर जस्ट मरेगा नहीं, शरीर उनका हल्का हो जाएगा, सुबह से शाम तक एक दिन आधा किलो अन्न ना खाए, पूरे दिल्ली में 2 करोड़ लोग अगर एक दिन अन्न नहीं खाए, 2 करोड़ इनटू 1/2 किलो कितना हो जाएगा? एक, अरे 1 करोड़ तो संख्या होता है, वेट में कितना होगा? आधा किलो में 1 करोड़ होगा, 1 करोड़ इनटू 1/2 किलो, 1 करोड़ किलो, 1 करोड़ किलो अनाज एक दिन में स्टॉक हो जाएगा। जस्ट थिंक ऑफ इट, भुखमरी होगा एक दिन। हम केवल सामान्य रूप से तपस्या कर लेते हैं, देखते मरेंगे तो ही नहीं, जरूर नहीं मरेंगे, कर लेते हैं एक दिन एक अगर फास्टिंग करते हैं सुबह से शाम तक, दूसरे दिन तो बदला लेंगे ही लेकिन 1 करोड़ किलो अन्न एक्स्ट्रा हो जाएगा अगर निर्जला करते। तो एक आदमी कितना पानी पीता है एक दिन में? अब होटल डॉक्टर के हिसाब के नहीं, अपने साधारण डॉक्टर के हिसाब से 3-4 लीटर ना, ठंडी के समय थोड़ा और कम जाता होगा, 3 लीटर 4 लीटर मान लो, 4 लीटर है ना, नेचुरल पति वाले बैठे 4 लीटर में पिए, और 2 करोड़ लोग अगर निर्जला कर ले, 2 करोड़ × 4 8 करोड़ लीटर पानी इरिगेशन में जो जल सिंचन विभाग सूचने का है, केवल एकादशी पारण करने से कितने फल फूल जाएंगे, हमारा राज्य कितने समृद्ध हो जाएगा, जस्ट राइट टू फॉलो एकादशी, ये भगवान के विधान है। अगर इसको पालन करें राज्य में तो कोई कमी रहेगा ही नहीं किसी प्रकार से। दो ही चीज से तो जीते हमने, अन्न और जल, बाकी एयर तो भगवत सप्लाई, उसको तो हम प्रोड्यूस नहीं करते हैं और तो खुद ही सप्लाई मिलता है। इन दोनों को थोड़ा कंट्रोल में हो गए कुछ कमी रहेगा। आजकल वैज्ञानिक कहते हैं आगे चल करके पानी का इतने बड़े क्रिसिस आने वाला है 20-25 साल के बाद में, अभी तो बटल खरीदना पड़ता है। आज से 40 साल पहले हम जो बच्चे थे कभी स्वप्नों में सोचे थे पानी भी बेचना पड़ा, खरीदा गया पानी को सोचे थे हम लोग, बूढ़े बूढ़े को सोचे थे अपने बचपन में, पानी भी कोई खरीदेगा है, पानी भी खरीदते लो, नदी की नदी, नाला को नाला, कहां तला भरा पड़े फिर लोग खरीदेंगे उसको, लोग कोई बेचेगा, लेकिन ये नॉर्मल हो गया। आजकल बाहर निकलते ही बटल भरना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, फिर कितना 20-25 रुपया हो गया बटल, वो फिर मिलेगा बटल तो और ज्यादा, पानी भी है उसमें मिनरल्स नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता भाई, लेकिन ऐसे ही होता है जो कैसा होगा। अब तो लगता है कुछ दिन के बाद पानी बटल नहीं, एयर बटल भी खरीदना पड़ेगा, एयर बैल में इतने पॉल्यूशन हो रहा है, यह हमारी प्रगति है, ये प्रगति है दुर्गति है, सचमुच एनालिसिस करने से पता चलेगा। तो इस प्रकार तो विशुद्ध राज्य वो राज्य से कुछ छोड़ दिए और उनके राज्य में किसी प्रकार के बहुत डुप्लीकेट चीज तो कोई था ही नहीं, डुप्लीकेट वर्ड ही नहीं होता तभी जमाने, सब विशेष क्या बोलते हैं उसको ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक प्योर ऐसे चीज मिलता। अगर आजकल ऐसी चीज मिलता है जंगल में नहीं जाता, क्यों जाए ऑर्गेनिक मिलता ना अंदर। कई कई लोग जंगल में, जंगल तो है नहीं आजकल, मैंने जो फार्म हाउस अगर में जाकर रहते हैं उनको पूछो क्यों रहते हैं, ऑर्गेनिक चीज काम करते हैं इसके लिए, तभी जहां तो ऑर्गेनिक ही होता है, ऑर्गेनिक अलावा कोई होता ही नहीं था दूसरा, प्लास्टिक वर्स्टिक तो था ही नहीं। तो फिर भी इतने सुंदर दी क्वालिटी चीज सब प्राप्त होते हुए राज्य में सब यथेष्ट परिमाण में होते हुए उस भोग को उन्हें त्याग दिए। किस लिए त्याग दिए ना, तपसे तप करने के लिए चल पड़े। घर में महल में रहकर तप नहीं किया जा सकता, महल में रहकर फास्टिंग तो कर सकते हैं, नहीं, महल में रहने से महल का फर्श ऐसा है, व्यवस्था ऐसा है, लोग सब कुछ है, अटल अटल तक नहीं हुआ होगा सर, जो भी हो व्यवस्था वो नहीं। जंगल में जाएंगे ना सोने के लिए बेड है, ना रजाई है, ना मॉस्किटो नेट, ना कुछ भी नहीं जाना। और बोले जंगल में लेकर सब जाएंगे, नहीं लेकर भी कुछ नहीं जाना है। लेकर क्या लेकर गए, केवल पत्नी को साथ में लेकर गए, वो तो प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। लेकिन फिर भी महाराज ने केवल शत्रुपाल को साथ में लेकर गए, कोई संबंध हम नहीं लिए, क्योंकि दूसरा संबंध लेते तो कोई कैरियर जाता, कोई लेकर जाते, कोई नहीं, केवल दोनों ही गए, दोनों कितना समझ कैरी कर सकते हैं, राधा रानी है ज्यादा तो कैरी नहीं करेंगे। ऐसे कली जंगल को तपस्या करने के सब भारिया वनमाविशत भारिया के सही मनु महाराज स्वयं मनु ने वन प्रवेश कर लिए। इसके और एक शिक्षा है कि प्रत्येक जीव सृष्टि के प्रथम पुरुष और स्त्री सबसे आदर्श सिखाने के लिए पूरे जुगपत इस शिक्षा को देने के लिए, आदर्श को सिखाने के लिए आपने आचरण के द्वारा ये शिक्षा देते हैं कि अगर परिवारों से ठीक ठाक हो गया अभी घर में नहीं रहना चाहिए। घर में रहने से फोन आएगा, कोई पूछेंगे डैडी ऐसा क्या करूं क्या करूं, नहीं ये बात सुनना ही नहीं, चल पड़ो कहां जंगल जहां रेंज भी नहीं पकड़ेगा। तब जान फोन नहीं था अलग बात है, लेकिन बाईचांस कोई हो तो ऐसे जगह में चले जाए बिल्कुल शांति, नो डिस्टर्बेंस, फिर क्या न केवल कष्ट सहे, जान बूझ कर कष्ट सहू, यही बात सभी की पता है। कष्ट में कौन याद आता है ना नहीं? दुख में सुमिरण सब करे, सुख में सुमिरण नहीं होता। तो इसलिए दुख को जान बूझ करके जंगल जा करके हमेशा इसी परेशानी को स्वीकार करे, ताकि पल पल भगवान याद आए, प्रभु आज मच्छर नहीं हो इसी जगह मुझे मिल जाए, हाथ गया एक प्रभु थोड़ा कांटा, मैंने कोई हमेशा हर स्थिति पर भगवत भरोसा करना ही पड़ेगा कंपल्सरी, और नो अदर अल्टरनेटिव। तो इस प्रकार स्थिति को जान बूझ कर स्वीकार कर लो, पल पल भगवत की याद आए, भगवान याद आए और भगवान की भरोसा पर चलो, ना कि मेरा ये है ये निकालो ये कर लो, किसी और भरोसा के ऊपर चलो, नहीं, केवल हरि ही शरणम हरि भरोसा। ऐसे करने के लिए जान बूझ कर जंगल चले जाते थे पति पत्नी, कभी अकेले सकते पत्नी बोलेंगे ये हो रहा है, ये देखो ये आ रहा है, सांप आ रहे, बिच्छू, भगवान की याद करो, बिच्छू काट ले दवाई पानी, मेडिसिन स्टोर है ही नहीं है, हरि भरोसा। दोनों की बातचीत होगा भी भगवान के बारे में होगा, चिंतन होगा भी भगवान के बारे में होगा, और कष्ट तो सहना ही, तो फोर्सिबली गढ़ कंसेप्शन होना पड़ेगा, कृष्ण कंसेप्शन होना पड़ेगा, फोर्स, आपको कोई चारा ही नहीं बच नहीं सकते, क्योंकि दुख है इतने प्रकार के, दुख खाने पीने सोने आचरण परिवेश सब में जंगल ही है। तो कृष्ण कंसेस होने के लिए फोर्स कंपल्सरी कृष्ण कंसेस हो जाएंगे, और बाकी शरीर तो चतुर्थ अवस्था के बाद शरीर तो गिरता है, मरेगा ही, डिटोरेट होता है, तो शरीर को पुष्कर फायदा क्या, ये कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग देखिए, ये हमारी वैदिक शिक्षा है। वैदिक शिक्षा होता है मरते दम तक दो मिनट से पहले तक मैं कुछ खाऊं, मुझे थोड़ा गुलाब जामुन लाकर खिला दो, हमारा दादाजी वो चाहते हैं, हम क्या उनका सही शिक्षा गुलाब जामुन खाने का था, मैं लेकर आया, खा तो नहीं पाए, मुंह में भरे, उल्टी कर दिए, लेकिन भरा था मैंने लाकर, इतने बड़े सेवक में हूं मेरे पिता। अरे वो भी जैसे आप भी ऐसे नहीं, इसीलिए कम से कम 20-25 साल पहले से खान पान त्याग दिया जाए, केवल कष्ट स्वीकार किया जाए, तब ये मनुष्य शरीर ये जीवन की सही लक्ष्य प्राप्त हो जाए, सफल हो जाएगा। नहीं तो विफल तो दी देश हम विफल करते आ रहे हैं, खराब करते आ रहे हैं, अंत भला तो सब भला, फाइनल एग्जाम तो सही कर लो, वो भी हम प्रयास नहीं करते। अंत नारायण स्मृति अंत काले चुनाव में स्मरण मुक्ता करे, तो भगवान एक सुप्रीम फॉर्मूला दे दिए, भैया तुम जो करना है कर लो, ये अंत समय में अगर स्मरण नहीं हुआ तो सब गए जीरो, कुछ नहीं मिलेगा, और कुछ भी करो अंत में स्मरण हो गया तो, इसलिए स्मरण तो जब आता है जब दुख मिलता है, इसलिए जान बोझ करे तो कुछ तपस्या स्वीकार करना चाहिए, घरदार छोड़ के वन को चला जाना चाहिए। यही आदर्श जीवन पद्धति कम से कम मनुष्य के लिए, मनुष्य घर वाले आपको तो पशु तो वन में ही रहते हैं, वो कहां जाएंगे वन में, इसका उनके लिए वनवास नहीं चाहिए, वो तो वन में ही रहते हैं, वो भले टाउन पे आ जाए उनके लिए ही तपस्या होगा क्योंकि बाथरूम में नहा नहीं सकते, फिर से पानी पी नहीं सकते, उनके लिए भारी तपस्या हो जाएगी, हम लोग तालाब से पी नहीं सकते, हमको बटल वाटर चाहिए, हमारे लिए तपस्या। तो इसलिए हमको इस प्रकार के सुख सुविधा के परिवेश को परिस्थिति छोड़ करके इस सुविधा में जाए, जहां दुख ही दुख हो तो इसी हरि स्मरण होगा। ये इस सृष्टि के सृजन के प्रथम दंपति जो साधारण अधिकारी पुरुष नहीं थे, पूरे संसार के एकछत्र सम्राट थे, वो पति पत्नी इसी के तपस्या करने के लिए घर छोड़ राज्य छोड़कर, राज्य सुख छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके वन में प्रवेश किए, तपस्या करने के लिए सफल। ये बहुत बड़ी आदर्श शिक्षा है, इसी की शिक्षा मनु महाराज की मनवंतर कथा में सबसे पहले ये मनु की आदर्श शिक्षा ये है, सुखदेव को समझे। तो हम लोग कम से कम जो इस उम्र में हो चुके हैं वो अभी मन में सोचे किस एग्जाम क्या करूं, और जो अभी हुए नहीं होने वाले हैं वो भी विचार करें कि हमको ऐसा करना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी। वेरी गुड। तो जब हमको एक बीमारी होता है ना, तो डॉक्टर पास जाते हैं, बोलते हैं मेडिसिन में नहीं मिलता, अल्टरनेटिव ये भी कह सकते हैं, तो अल्टरनेटिव तो होता है। आप अगर घर में रह करके कृष्ण कंसेस हो सकता है तो बाहर जाने का क्या जरूरत है। आप अम्बरीश महाराज का बात कहते हैं, अम्बरीश महाराज का पहचान शुरू होता है सवे मन कृष्ण पदारविंदयो हो, सबसे पहले बाकी इंद्रियों को भले हम सेवा में लगा देते हैं, आप बोल रहे हैं हाथ को इसे लगाए, पैर को इसे लगाए, आंख को इसे लगाए, ये तो हम करते हैं, लेकिन मन कहां रहता है? हम जानते हैं मन कहां रहता है ना, हम भगवान के लिए काम करते हैं लेकिन मन रहता ना बोल रहे विलास में। लेकिन अम्बरीश महाराज का जो परिचय शुरू हुआ सबसे पहला सेंटेंस क्या है? मन उनका भगवान में था, बाकी इंद्रियों भोग का चौथे सब भगवान जाएंगे। तो हमारा मन का स्थिति क्या है? तब हम हल में रह करके अम्बरीश महाराज की तरह एक वो अल्टरनेटिव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ये हो ही नहीं, संभव ही नहीं। हम मन तो हम जानते मन का स्थिति क्या है, तो अम्बरीश महाराज का एग्जाम्पल हमारे लिए कतई संभव नहीं, हमारे लिए ये संभव, क्योंकि हम काम नहीं डंडा मारना पड़ेगा, जबरदस्ती करना पड़ेगा, जाओ निकल कर जंगल में, उपाय में मिलता नहीं तो क्या करें। हम तो सुख के लिए प्रयास करेंगे, ढूंढ ढांड कर प्रयास कर, मिला ही नहीं कुछ, तो कंपल्सरी फास्टिंग करना पड़ेगा, कंपल्सरी दुख भोगना पड़ेगा, और दुख फिर कंपल्सरी भगवान याद आएंगे। तो हम इसी के लायक है, अम्बरीश महाराज का हमारा योग्यता नहीं। ओके समझ में। और कोई ग्रंथराज भागवत महापुराण की संवेद भक्त की।